की, मीठे बाबा की मुरली जो हम सभी के लिए, सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए जीवदान है, जिस मुरली के आधार से हमें ये नया जीवन मिला, जो मुरली हम सबको महान बनाती है, बाबा के महावाक्यों से खेलना, वही चिंतन और मनन करना, ऐसी श्रेष्ठ सेवा जो बाबा ने दी है, बाबा के वरदानों से सबके पास जो वरदान आते हैं, आज के वरदान को सुन करके आप सभी का ध्यान गया होगा। आज की मुरली सबने सुनी है ना, आज की अव्यक्त बाबा की मुरली रिवाइज कोर्स की, जिसमें बाबा ने अब नहीं तो कब नहीं ये महामंत्र पढ़ाया है, तुरंत दान महापुण्य, ब्रह्मा बाप के संस्कार को फॉलो करो। जैसे बाबा ने सब कुछ तुरंत किया और वरदान में एक बहुत सुंदर शिक्षा बाबा की सुनी कि अलबेलेपन का और विशेष अटेंशन का, दोनों प्रकार का अभिमान नहीं चाहिए, न अलबेलेपन का अभिमान हो और न विशेष अटेंशन का अभिमान हो। वरदान सुनते पढ़ते आप सबका जरूर विचार चला होगा कि अलबेलेपन का भी अभिमान होता है, अटेंशन का अभिमान भी होता है कि मैं बहुत अच्छा अटेंशन अपने आप पर रखता हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूँ, मेरा बहुत अपने आप पर ध्यान है, अभिमान आ जाता है। जो हिम्मत से मदद लेने की विधि बनी हुई है वो विधि भूल जाती है। अलबेलेपन में कहते हैं बाबा तो है ही हमारे साथ, बाबा के ही तो हम बच्चे हैं, बाबा का ही खाते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, बाबा ही सब कुछ मुझसे करा रहा है, ये भी एक अलबेलापन, इसका भी अभिमान आ जाता है। तो बाबा की सरल भाषा में एक छोटा सा वरदान भी हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है, अगर उस पर थोड़ा सा हम सब ध्यान देते हैं। तो बाबा की ऐसी शिक्षाएं, ऐसी मुरलियां आप सभी बहुत प्यार से पढ़ते सुनते और अपने जीवन में धारण करके समाते रहते हो। अभी अभी थोड़े समय पहले मुझे क्लास कराने के लिए कहा गया है, मेरा एक संकल्प चला कि इस बार जब बाबा 2 तारीख को इस सभा में आए थे, बहुत बड़ी सभा थी और सभी बच्चों को एक बहुत श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में दिलाया, वो स्वमान था पूर्वज और पूज्यपन का। आप सभी ब्राह्मण बच्चे पूर्वज हो, पूज्य हो, पूर्वज और पूज्य समझ करके सारी रचना की पालना करो। ये मुरली आप सबने पढ़ी और सुनी होगी, जिन्होंने इस मुरली को सुना है पढ़ा है वो हाथ उठाओ। लगभग सभी भाई बहनों ने इस मुरली को अच्छी तरह से पढ़ा है, सुना है, जरूर चिंतन भी किया होगा कि बाबा कितना ऊंचा स्वमान हम सबको स्मृति में दिलाते हैं। बाबा के बच्चे कोई नए हैं, कोई पुराने हैं, कोई 6 महीने वाले भी हैं तो कोई 30, 40, 45, 50 वर्ष से भी ज्ञान में हैं। और बाबा हर एक बच्चे को, जो बाबा के सामने आता है नया हो या पुराना, हर एक को इसी सम्मान की दृष्टि से, इसी महानता की नजर से देखते हैं कि एक एक मेरा बच्चा पूर्वज है, पूज्य है। और पूर्वज किस लिए है वो हम आप सभी जानते हैं, क्यों है पूर्वज, कैसे हैं पूर्वज, क्योंकि सृष्टि की आदि सतयुग से जब से प्रारंभ हुई आदि काल में हम सब आत्माएं सृष्टि पर, ब्राह्मण आत्माएं जो देवता बन करके उतरी, उसके बाद ही अन्य वंशावलियां अन्य धर्म की आत्माएं आती हैं। तो जो पहले पहले आए सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाली आत्माएं, आदि काल की आत्माएं, वो सारी सृष्टि के लिए, पूरे वृक्ष के लिए पूर्वज हो गई। तो एक तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं आदि काल की आत्माएं हैं, इस दृष्टि से पूर्वज हैं। दूसरा, हम सब का, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सब का डायरेक्ट बीज के साथ कनेक्शन है। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं अगर हम इस भाग्य को स्मृति में रखते हैं कि जो इस कल्प वृक्ष का बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, उस बीज के साथ हम सब का पहला पहला डायरेक्ट संबंध है। उसके साथ उसके जो पहले दो पत्ते हैं, आदि देव और आदि देवी, जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता, जो दो पत्ते सृष्टि कल्प वृक्ष के हैं, उसके साथ साथ हम सभी तपस्या करते हैं। तो बीज के साथ कनेक्शन है, इसलिए हम सब तना के अंदर हैं। ये सभी ने कल्प वृक्ष का जब ज्ञान सुना होगा तो समझ में आ गया होगा कि इस कल्प वृक्ष में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं तना के रूप में हैं और ब्रह्मा की पहली रचना है, ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा के मुख से हम सब का अलौकिक दिव्य जन्म हुआ है। जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, हर धर्म इसी एक धर्म पिता, पिताओं के पिता से निकला है, इसलिए सारे धर्म की आत्माएं हमारी वंशावली हैं, ब्रह्मा बाप की वंशावली हैं। एक बहुत ऊंचा स्वमान, बहुत ऊंची स्मृति पूर्वजपन की बाबा ने हम सबको दिलाई है कि बच्चे आप कौन हो। अगर सभी बाबा के बच्चे जिनको निश्चय हो गया, जिन्होंने मर्जीवा जन्म ले लिया, जो ब्राह्मण बन गए, वो इसी श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहें, तो कितनी कमजोरियां, कितनी छोटी छोटी बातें, जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, जो मध्यकाल के हैं, शूद्रपन के हैं, वो इस स्वमान में रहने से अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे घर में भी कोई बुजुर्ग पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं, तो बच्चे हैं घर में, अन्य संबंधी हैं घर में, इसलिए बड़ों का ध्यान अपने आप पर अपने स्वतः ही रहता है, दिलाना नहीं पड़ता, खिंचाना नहीं पड़ता। लेकिन मैं बड़ा हूँ, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, सदैव उनका ध्यान अपने आप पर रहता है। सब कुछ सिखाने वाले हैं, सबको प्रेरित करने वाले हैं, इसलिए बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को पूर्वजपन के समान में स्थित कर देता है। जिस समान में अगर हम स्थित होकर के कोई भी कार्य करते हैं, तो किस किस बातों पर हमारा ध्यान जाता है, ये समान हमको किन किन स्मृतियों में स्थित कर देता है, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति, हमारे कर्म किस तरह के हो जाते हैं, पूर्वजपन की स्मृति से ही एक बुजुर्गपन के अनुभवी के संस्कार आ जाते हैं कि अनुभवी आत्मा है, हर बात का इसने अनुभव कर लिया है। जितनी भी हमारी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का अनुभवी है। कोई भी पुराना भाई होता है, पुरानी बहनों को हम देखते हैं, तो हम उसी दृष्टि से देखते हैं कि इनको सब प्रकार का अनुभव है। बाबा ने जो इन्हें साकार में पालना दी है, जो इन्होंने सेवाएं की हैं, जो इन्होंने बेगरी पार्ट देखा है, जो इन्होंने विरोध का सामना किया है, हम अपनी दादियों को देख करके, बड़ों को देख करके, उनके त्याग और तपस्या को देख करके, साकार में इन पूर्वजों को देखते हैं तो इनसे बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं। कैसे वो पूर्वजपन के भान में रहते हैं, एक एक बच्चे की, एक एक ब्राह्मण आत्मा की पालना का कितना ध्यान है, वो हम सभी अपनी महान दादियों से सीख रहे हैं। कैसे ज्ञान योग की पालना कर रही हैं, और पालना में हमेशा ध्यान रखा जाता है, जैसे लौकिक रीति में भी माता पिता ध्यान रखते हैं कि बच्चा मेरा शक्तिशाली बने, बच्चे को इतनी प्यार की पालना मिले जो उसमें सब शक्तियां समा जाएं। तो बाबा ने भी हम सबको शक्तियों से पाला है और हर एक आत्मा को शक्तियां प्रदान करके, शक्ति की सकाश दे करके, मैं कभी कभी विचार करता हूं कि साकार में 32-33 साल साकार बाबा का पार्ट चला और आज 69 से अब तक 35 वर्ष पूरे होने वाले हैं अव्यक्त पार्ट चलते हुए। कैसे बाबा अभी तक हम बच्चों की, अपने स्नेह की दृष्टि से, ज्ञान की शिक्षाओं से, अपनी वतन से सकाश दे करके हम सब की अव्यक्त अलौकिक पालना कर रहे हैं। इस पालना का रिटर्न हम सब कहाँ तक कर रहे हैं, और उसका पहला रिटर्न है कि मैं आत्मा कहाँ तक शक्तिशाली बनी हूँ। जो हमारे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण परिवार की आत्माएं निर्बल हैं, कमजोर हैं, जो अभी तक व्यर्थ संकल्पों से युद्ध करती रहती हैं, जो व्यर्थ संस्कारों से लड़ती रहती हैं, एक एक विकार को जीतने की मेहनत करती हैं, क्या मुझ आत्मा के द्वारा उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं? मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली बनी हूँ? हमेशा एक ध्यान, एक संकल्प रहता है कि मेरी वृत्तियां कैसी हैं? अंदर की वृत्तियां इतनी श्रेष्ठ, शुभ और कल्याणकारी हैं जो वायुमंडल को शक्तिशाली बना दें। आप सभी बाबा के बच्चे जिस सेवा केंद्र पर क्लास करते हैं, हर प्रकार की आत्माएं उस क्लास में आती होंगी, कोई बहुत योगी ज्ञानी आत्माएं भी हैं, शक्ति संपन्न हैं, समर्थ हैं, और कोई कोई आत्माएं ऐसी कमजोर हैं जो बाबा की बात सुनती हैं लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर पाती। उनसे नफरत और घृणा नहीं, उनसे ये नहीं है कि ये तो सुधरने वाले ही नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी सुधारने का एक शुभ संकल्प, उन्हें भी अपनी शक्तियां सकाश में देना, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से उनको भी वायुमंडल से शक्तियां प्रदान करना, ये मुझ पूर्वज आत्मा का कर्तव्य बनता है। तो हम सभी अगर अपनी वृत्तियों पर ध्यान देते हैं तो हमारी वृत्तियां पहले तो अपने सेवा स्थान को, अपने घरों को, जहां पर हम रहते हैं, उस स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बना दें, जिसके अंदर कोई भी अशुद्धि, कोई भी प्रकार की माया, कोई भी विकार, कोई भी विकारी संकल्प उत्पन्न ही न हो। वो तब होगा जब हम सबका ध्यान अपनी सूक्ष्म वृत्तियों पर होगा। अगर हम सब ज्ञान योग के चिंतन में रमण करते हैं, अगर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपनी प्राप्तियों की स्मृति में रहते हैं, निरंतर उस समान में स्थित रहते हैं, तो ये वृत्तियां हमारी श्रेष्ठ बनती जाती हैं। आप सभी जानते होंगे, सुना भी होगा, बहुत सी क्लासेज इस पर मिलती हैं, कोई भी स्थान का वायुमंडल दो बातों से प्रभावित होता है, एक हमारी वृत्तियों से वायुमंडल बनता है। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारे अंदर की वृत्तियां भावनाएं हैं, वैसा वायुमंडल क्रिएट हो जाता है। और दूसरा, जैसी वार्तालाप चलती है, अगर वार्तालाप स्थूल है, साकारी बातें, हम लौकिक दुनिया की बातें अधिक समय करते हैं, उन्हीं बातों में रमण करते हैं, अगर किसी स्थान पर, सेवा स्थान पर भी ज्ञान योग की चर्चा कम होती है, बातों की चर्चा अधिक होती है, तो उस स्थान का वायुमंडल चुंबकीय नहीं बनता, आकर्षक नहीं बनता। कोई आत्मा आते ही उस वायुमंडल से प्रभावित नहीं हो सकती। आप सभी बाबा के घर के वायुमंडल को देखते, अनुभव करते हैं, मधुबन के वायुमंडल का सुनते और वर्णन करते हैं कि मधुबन में जो भी आ जाए, ऐसे शक्तिशाली प्रकंपन हैं, ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस वायुमंडल बना हुआ है, जो आत्माएं आते ही एक बार तो अनुभव करती है कोई अलौकिक स्थान है।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए।
मधुबन के वायुमंडल की बात हम सब ने अनुभव की है, जानते हैं, और आप भी जो पहली बार आए हैं, मधुबन दर्शनीय स्थल जहाँ पर साकार बाबा की तपस्या है, बहुत समय तपस्या की है, जहाँ पवित्र आत्माएं वास करती हैं, उस स्थान के वायुमंडल में कितनी शक्ति है। लाइट हाउस की तरह सारे विश्व में अपनी लाइट दे रहा है, उसका अनुभव करेंगे। हम भी अपने हर स्थान के, जहाँ भी रहते हैं, अपनी वृत्ति से और अपने वार्तालाप से उस स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं, ये हम पूर्वजों का पहला कर्तव्य है, ताकि आने वाली आत्माएं भले कैसी भी तमोगुणी वायुमंडल में रहती हैं, कितनी भी संस्कारों के वश हैं, कमजोर हैं, कितनी भी विकारी पतित दृष्टि और वृत्ति है मनुष्य आत्माओं की, वो उस स्थान पर आते ही परिवर्तन करने का संकल्प ले लें, शक्ति प्राप्त हो जाए कि बदलना सहज है। कई लोग कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है, तो बहुत कड़े संस्कार हैं, लेकिन बाबा ने बहुत सहज करके हम सब बच्चों को अनुभव करा दिया। कड़े संस्कार भी सहज समाप्त हो गए, बदल गए, पिघल गए, एक बाबा के प्यार में, बाबा के स्नेह में, बाबा की शक्ति के नीचे आने से। तो हम सभी पूर्वज आत्माएं अगर ये अपना कर्तव्य समझ करके अपनी वृत्तियों से एक श्रेष्ठ वायुमंडल का निर्माण करें, और दृष्टि में सदा रहे कि ये सब भाई भाई हैं, हम सब एक पिता के बच्चे हैं, ब्रदरहुड की भावना पैदा कर दे दृष्टि, भेदभाव समाप्त कर दे, इतना अंदर से प्यार, न हम जाति को देखें, न धर्म को देखें, लेकिन दैहिक धर्मों से, दैहिक जाति पाति भेदभाव से बाबा ने हम सबको निकाला है। ये सब शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा की संतान, आदि पिता की रचना, हम सब के भाई हैं, हमारी ही वंशावली के हैं। तो अगर एक दृष्टि के अंदर दृष्टिकोण बदल जाता है, स्नेह की उत्पत्ति होती है, उस स्नेह के वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुंचते हैं, उसको अपनेपन की फीलिंग आती है। जैसे मधुबन को, यहाँ को, शांतिवन को सभी कहते हैं मेरा घर है, मेरा बाबा का घर है, अपनेपन की फीलिंग हरेक को आ जाती है, हरेक एक दूसरे से उसी स्नेह से, पारिवारिक दृष्टि से मिलता है। तो हम सभी जहाँ भी रहें, इतनी दृष्टि में परिवर्तन आ जाए, हमारी स्मृति ऐसी हो, एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा की स्मृति दूसरों को दिला दे, स्मृति दिलाने वाली स्मृति हो, हम इतना बाबा की याद में खोए रहें, खो जाएं, जो दूसरे अपने आप पूछ लें, देख लें कि बाबा को कैसे याद किया जाता है। अभी तक प्रश्न न करते रहें, याद कैसे करें, योग नहीं लगता। बाबा कई बार कह देता, बच्चे योग योग शब्द क्यों कहते हो, योग कहोगे तो बहुत दूर हो जाओगे। बाबा की याद, बहुत प्यार है, प्राप्तियां हैं, स्मृति है, बाबा ने इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, बस बाबा कहो और बाबा में समा जाओ, इतनी सहज याद, उसको मुश्किल मत करो। तो हम सभी अगर सहज योगी बन करके रहते हैं, सहज स्मृति में रहते हैं, तो दूसरी आत्माओं को अपने आप स्मृति आ जाती है। हमारे कर्म अन्य आत्माओं को श्रेष्ठ चरित्र बनाने की प्रेरणा देते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस में एक टॉपिक था कि आपके प्रोफेशन में ये परमात्मा की नॉलेज विजडम कहाँ तक कार्य करती है, किस तरह से कार्य कर रही है। तो जब इस टॉपिक पर मुझे बोलने के लिए कहा गया, मैंने कहा कि ग्राम विकास के क्षेत्र में कुछ समय से सेवाएं करने का भाग्य मिला है, गांव-गांव के विकास के लिए ग्राम विकास प्रभाग बनाया गया है इस राजयोग एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत, बहुत सी सेवाएं दादी जी की प्रेरणा से गांव-गांव में हो रही हैं, और सरकार भी हमारा बहुत विकास का कार्य कर रही है, लेकिन चाहे जितने विकास के कार्य कर लिए जाएं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति कितनी भी आ जाए, संपूर्ण विकास तभी संभव है जब उनके चरित्र का निर्माण किया जाए। चरित्र निर्माण के बिना संपूर्ण विकास संभव नहीं है, और वो चरित्र निर्माण का कार्य परमात्मा ने करके दिखाया है, श्रेष्ठ कर्म सिखला करके, हम सबको श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे करके। बाबा का एक एक बच्चा जिसके हाथों में श्रेष्ठ कर्म की कलम है सबके हाथों में, श्रेष्ठ कर्म कैसे किए जाएं, जो कर्म कभी पाप कर्म न बने, विकर्म न बने, वो श्रेष्ठ कर्मों की कला, जो परमात्मा की याद में रहकर के कर्म किए जा रहे हैं, जिन कर्मों में स्वार्थ की भावना नहीं है, जिन कर्मों में देनेपन की भावना, सब कुछ प्राप्त कराया जाए, दूसरों को दिया जाए, अपनेपन का भान नहीं, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे पोस्ट और पोजीशन मिले, ये भान नहीं है, लेकिन वो कर्म हमारे श्रेष्ठ को ऊंचा बना दें, और जिनके लिए हम कर्म कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ चरित्र बनाने की सेवा करें। तो जब श्रेष्ठ चरित्र का ज्ञान हर आत्मा को प्राप्त होगा, तब संपूर्ण विकास संभव है। आज तो एक तरफ विकास किया जाता है, दूसरी तरफ आज काम विकार के कारण इतनी अधिक वृद्धि, जनसंख्या की इतनी अधिक वृद्धि हो रही है, इतनी हिंसाएं हो रही हैं, क्रोध काम क्रोध लोभ ने इतने अधिक पांव फैला लिए हैं, जो सारा भारत ही नहीं सारा विश्व भ्रष्ट बन गया, भ्रष्टाचारी हो गया। अब ऐसे भ्रष्टाचारी संसार को बदलने का कार्य किसका, हम सभी पूर्वजों का है, बाबा के साथ साथ हम सभी निमित्त हैं इस विश्व को बदलने के। लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म जो श्रेष्ठ चरित्र का दर्शन कराएं, क्या हम सभी इतने चरित्रवान बाबा के बच्चे हैं, काम की वृत्ति परिवर्तित हुई है, क्रोध पर हमने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, इतनी सरल सहज नेचर बनी है, अनासक्त वृत्तियां कहाँ तक हैं, लोभ वृत्ति अनेक चीजों की संग्रह वृत्ति तो नहीं है, त्याग वृत्ति आई है, तब कहेंगे श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा है। तो बाबा ने हम सब पूर्वजों को श्रेष्ठ कर्म करने की श्रेष्ठ कला सिखाई है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके कर्म करते हैं, देह भान से मुक्त रह करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं, तो वो कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस कराई बाबा ने। बच्चे कोई भी कर्म करो, कर्मेंद्रियां कर रही हैं, कराने वाली मैं आत्मा अलग हूं। तो जब इस स्मृति में रहकर के कर्म किए जाते हैं तो कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, कर्तापन का भान नहीं रहता। कराने वाली आत्मा और दूसरा कराने वाला बाबा करा रहा है, मैं निमित्त मात्र इन कर्मेंद्रियों से कर रही हूँ। तो जब इतनी अच्छी स्मृति रहती है तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर देते हैं। तो बाबा ने हम सबके चरित्र को ऊंचा उठा करके सारे विश्व को ऊंचा बनाने का बेड़ा उठाया है, परिवर्तन करने का एक ठेका लिया है कि इस विश्व को परिवर्तन करना है। तो हम सभी बाबा के बच्चे कहाँ तक चरित्रवान बने हैं, ऐसी अगर सूक्ष्म चेकिंग हम अपनी करते रहें, और अगर इसमें कोई रुकावट है तो कौन सी रुकावट है, आप सभी विचार करना। बाबा की इस चरित्र भूमि में आप आए हैं, एक बहुत महीन चेकिंग आप सब अपने आप की कर सकते हैं। बाबा के एक दिन पहले से इस शांति वन में तपस्या की लहर चलती है, सभी योग करते हैं। ये तो इस बार का एक बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि बाबा और दादी जी की प्रेरणा कि ये बाबा का जन्म उत्सव जन्मदिन है, शिव जयंती है, इसलिए खूब धूमधाम से मनाओ, खूब खुशियां मनाओ। तो खुशियों के साथ साथ हम अधिक वाचा में ना आ जाएं। तो मेरे ध्यान पर तीन बंधन सामने आ गए कि हर एक आत्मा अगर वो पूर्वजपन की स्मृति में नहीं रह पा रही है तो कौन से ऐसे बंधन हैं? तो पहला बंधन तो सबसे कड़ा दिखाई देता है, अपने ही संकल्पों का, अपने ही मन का, बहुत कड़ा बंधन है। अपने संकल्पों के बंधन के वश अपने व्यर्थ पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ संकल्प चल जाते, जो बाबा ने कहा अलवेलेपन के संकल्प चल जाते, ईर्ष्या के द्वेष के संकल्प चल जाते, मन कभी बहुत ऊंची उड़ान भरने लगता है और कभी क्या होता है, एकदम निराश दिल से कष्ट हो जाता है, कभी युद्ध करते करते पराजित हो जाता है और कभी नशे के अंदर इतना खो जाता है जो समझता मेरे जैसा कोई नहीं। तो बाबा ने इस बंधनों से मुक्त किया है। हम सभी अपने सूक्ष्म बंधनों को देखें, मन के बंधन में मैं आत्मा बंधी हुई तो नहीं हूँ। सबसे अधिक बंधन यही है जो मन को उड़ता पंछी बनने नहीं देता। हम चाहते हैं कि एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएं, लेकिन जहां बंधा होगा वहां पर भाग जाएगा। जिधर भी ये रस्सी बंधी हुई होगी संकल्प की, उधर चली जाएगी। इसलिए इस बंधन को सभी चेक करना, क्या बाबा के घर में आकर के मैं आत्मा इतनी श्रेष्ठ उड़ान भर सकती हूँ, बस बाबा कहूँ और बाबा के वतन में पहुंच जाऊं, परमधाम की यात्रा कर लूं। अगर अनुभव न हो तो इस शांति वन के शांत एकांत में एकांतवासी बनना, संगठन में एकांत न चली जाए, सबके बीच में रहते एक के अंत में खो करके देखना कि ये मन इतना निर्बंधन है स्वभाव से, संस्कार से, पिछली आदतों से, कि एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए। बाबा कहे मेरा बाबा कहाँ है बाबा, वो परमधाम नैनों के सामने आ जाए और एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए। ये यात्रा करके देखना सवेरे, निर्बंधन होगा तो उड़ जाएगा और बंधन होगा तो खिंच जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा। दूसरा बंधन वाणी का है। इस वाणी के बंधन को भी आप बहुत महीनता से चेक कर सकते हैं, क्योंकि आत्माएं बहुत समय से इस बाजे को बजाती आ रही हैं। वाणी में आने की बहुत आदत है, अभी थोड़ी देर बाद आप उठेंगे तो देखेंगे कितनी आवाज है, भले कुछ भी कोई बोल न रहा हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आवाज की दुनिया में सुनाई और दिखाई देती है। ये रस इतना है जो बैठ जाए बातें करने लगे जो घंटों बीत जाता है। बहुत बंधन है वाणी का, परवश है आत्माएं जैसे इस रस से इतना बंध गई हैं कि वाणी में न चाहते हुए भी आ जाती है। बाबा अभी वाणी सुना करके हम सबको वाणी से परे ले जाता और बच्चे फिर वाणी में आ जाते हैं, आवाज में आ जाते हैं। और जब तक वाणी का रस हम सबको खींच रहा है क्या होगा, अव्यक्त रस का रसा स्वादन नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त रस, अव्यक्त मिलन का रस, बाबा के मिलन का रस, उस प्यार का रस। तो भले हम आवश्यक बातें, जरूरी बातें, काम की बातें जो दूसरों को सुख देने वाली हैं, ऐसी मधुर बातें करें, उसके लिए बाबा मना नहीं करता। लेकिन कम से कम पूरे 24 घंटे का मौन न हो। आप एक दो घंटा क्लास में बैठते हो, मन को मौन दे सकते हो, वाणी को मौन दे सकते हो। अगर सभी कल के दिन और परसों के दिन, दो दिन हैं, जो आवश्यक है, जो बहुत जरूरी है वही बोलें, अधिक बोल न निकलें, काम के सिवाय कोई बोल न निकलें। यहाँ इस वायुमंडल में आवाज से बोलने की कोई को ताकत भी नहीं है, बोलते भी नहीं होंगे, लेकिन जो अधिक बात चलती है वो कम हो जाए और कम से कम हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत सुंदर रस लेकर के हम कुछ गहरे अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि बाबा अभी चाहता है कि मेरे बच्चे अनुभवी मूर्त बन करके अनुभव कराने की सेवा करें। ज्ञान सुनना और सुनाना तो बहुत समय से कर रहे हैं और वो तीर दिमाग तक ही लगता है, दिल तक नहीं लगता। अगर अनुभूति का तीर लगाया जाए तो दिमाग तक लग जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है अनुभव करो और कराओ। तो जिस बात का अनुभव अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिस गुण का अनुभव नहीं कर पाए हैं, जिस शक्ति का अनुभव नहीं कर पाए हैं, ये बहुत गोल्डन चांस है आप सबके पास। 3 दिन 4 दिन आप यहाँ रहेंगे, गहराई में एकांत में जाकर के उसका अनुभव करें। लेकिन केवल एक ही व्रत है, और कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। खाना पीना बात भी करना, लेकिन अधिक नहीं बोलना। जो बात काम की नहीं है वो नहीं बोलनी है, जो जरूरी है, बहुत सुख देने वाली है, वही बातें हों। और तीसरा एक बंधन है संबंध संपर्क में, कर्म का बंधन, सेवाओं का बंधन। कई लोग समझते हैं सेवाओं में हम हैं, शायद सेवाधारियों को एक संकल्प चलता है, बाबा आएगा, बच्चों से मिलेगा, झंडा लहराएगा, मेरी ड्यूटी तो पहरे पर है, मेरी ड्यूटी तो भंडारे में है। कई सेवाधारियों के संकल्प चल जाते हैं, कर्म का बंधन जैसे उनको लगता ही बंधन है। वास्तव में सेवाएं बंधन नहीं है, कर्म तो हम कर्मणा शब्द ही समाप्त करके हम बाबा की सेवा पर हैं। और सच्चे सेवाधारी की हर मनोकामनाएं बाबा पूरी करता है, अनुभव कराता है। बाबा यहाँ तक कहता है मैं बच्चों के आगे हाजिर हो जाता हूँ। और आज का एक अनुभव मैं आपको सुनाऊँ, शायद आप सबने सुना हो या देखा भी हो। आज का अनुभव मैं एक बताता हूँ कैसे बाबा साथ है। हर पल बाबा हम बच्चों को कहो और हाजिर हो जाता है। आज ओम शांति भवन में झंडा रोहण का कार्यक्रम था, सुना है ना सबने, हमारी दादी जी झंडा लहराने गई थी और झंडा लहराते लहराते दादी बधाई देने लगी और बधाई देते हुए कहा, गुलजार दादी तुम अभी अभी बाबा के पास जाओ, अभी अभी जाओ, यहीं जाओ और बाबा को संदेश दो कि बाबा झंडे का संदेश दो, बच्चों के लिए संदेश दो। अब बताओ अचानक संदेशी को बोला जाए जाओ गो सुन कम सुन, एक मिनट में जाओ और संदेश लेकर के आ जाओ। फिर क्या हुआ? सभी झंडे के नीचे बैठे थे, दादी कहने लगी बाबा रस्सी खींचेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। दादी भी बैठ गई, सभी खड़े हो गए, 3 मिनट का गीत बजा और गीत बजा और दादी ट्रांस में चली गई, बाबा ने रस्सी खींच ली और दादी गई 3 मिनट के बाद वापस आई, डेढ़ गीत बजा। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई मेरा मुर्भी बच्चा, दादी के लिए कहा, आज्ञा करता है, निमित आत्मा अगर कहती है तो बाप भी बच्चों के बंधन में बंध जाता है, इसलिए बाबा ने बच्ची को अपने पास बुला लिया। तो दादी ने कहा और बाबा के पास संदेशी पहुंच गई और क्या संदेश दिया, पालना की बात मैं बता रहा हूं क्योंकि हम सबको वो पालना करनी है। तो बाबा ने एक 8 रत्नों की 8 थालियां दिखाई, 8 थालियां, और वो थालियां सुदर्शन चक्र के रूप में घूम रही थी। जब बाबा के पास गुलजार दादी गई तो बाबा ने वो 8 शक्तियां सुदर्शन चक्र के रूप में घूमते हुए देखी, थालियां, और वो दादी के आगे आगे जा रही थी जो बाबा के पास पहुंचते ही दिखाई दी। बाबा ने कहा बच्ची ये क्या है, इसको खोलो। तो उस थालियों के बीच में बहुत सुंदर रंग बिरंगी चमकते हुए हीरे थे। बाबा ने ताली बजाई और वो सब हीरे उड़ करके सबके मस्तक पर ऐसे लग गए। एक दृश्य सूक्ष्म मतन का दादी ने दिखाया, सुनाया, और वो ऐसे रंग थे, वैरायटी रंगों के हीरे थे जो सारे सबके मस्तक पर चमकने लगे और एक ऐसा सुंदर इंद्र धनुष बन गया। वतन में इतने सब बाबा के बच्चे इमर्ज थे और वो इंद्र धनुष के रूप में वो लाइट सभी पर पड़ रही थी मस्तक से निकल करके। बाबा ने कहा कि बच्चों को ये 8 रत्नों की सौगात, ये 8 शक्तियों की सौगात देना और कहना इन शक्तियों को धारण करके सबकी पालना करो, ये शिव जयंती की सौगात है। तो आज ये संदेश बाबा ने दिया और सबको बहुत बहुत मुबारक दी। 3 मिनट के संदेश में हम सबको बाबा ने 8 रत्नों की सौगात दी। तो हम सभी 8 रत्न 8 शक्तियां धारण करके अपने जीवन को इतना शक्तिशाली बनाएं जो पूर्वजपन की भान में रहकर अपने सारी वंशावली की इस कल्प वृक्ष की पालना कर सकें, क्योंकि इसको अभी शक्ति की, सकास की, जल की जरूरत है, सूख रहा है वृक्ष। तो हम अगर अपने शांति के प्रकंपन, योग के प्रकंपन, प्यार के प्रकंपन, बाबा के स्नेह के वाइब्रेशन इस वृक्ष को देंगे तो ये वृक्ष को शक्ति प्राप्त होगी। तो अपने आप को जवाबदार समझ, अपने आप को बहुत बुजुर्ग समझ करके, अनुभवी मूरत बन करके इस वृक्ष को सकास देनी है, हर आत्मा को शक्ति देनी है। बाबा ने इस पर एक मिसाल भी दिया, इस बार भी दिया, पहले भी दिया है, जैसे कहीं पर भी कोई उपद्रव होते हैं, हलचल होती है तो मिलिट्री और पुलिस समझती है कि यहाँ पर शांति करना, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है और फौरन पहुंच जाती है, आर्डर हुआ और पहुंच गई। हम भी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा हमेशा कहता है तुम मेरे शांति दूत बच्चे हो, मास्टर शांति के सागर हो, और दुनिया के अंदर हलचल है और हलचल और बढ़ती जानी है, जगह जगह पर समाचार सुनने का इंटरेस्ट तो रहता है, लेकिन बाबा अपने पूर्वजों को ये काम देता है कि बच्चे आपके पास ऐसी श्रेष्ठ मनसा की शक्ति होनी चाहिए जो उन आत्माओं को, अशांत आत्माओं को उसी समय शांति का दान दे सको। भले उनके पास वहां पहुंचना साकार में नहीं हो सकता, लेकिन दूर बैठे भी अपनी शक्ति के वाइब्रेशन सकास उन आत्माओं को दो, ये आप पूर्वजों का कर्तव्य है। तो ऐसे ऐसे कर्तव्य बाबा हम सबको स्मृति में दिलाते हैं, लेकिन हम कर्तव्य करने वाली आत्माएं पहले तो निर्बंधन बने और दूसरा सब शुभ भावनाओं का स्टॉक बहुत संपन्न भरपूर चाहिए। इसमें अशुभ का अंश न हो, किसी के प्रति भी नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष जो बार बार अंदर प्रवेश कर जाता है, बाबा कहता है इसको निकाल कर ड्रामा के हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखो और साक्षी दृष्टा बन करके हर आत्मा को निर्दोष दृष्टि से देख करके इन्हें अपनी शक्तियों की प्रकाश दो, इन्हें अपनी शांति की शक्ति दो जिससे आत्माओं की हलचल समाप्त हो जाए। तो हम सभी बहुत बहुत जवाबदार आत्माएं, ब्राह्मण बनना माना बहुत बड़ी जवाबदारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो जैसे हमारे संकल्प, जैसी हमारी भावनाएं, जैसे हमारे कर्म, जैसी हमारी वाणी, उसका प्रभाव सारे वायुमंडल पर पड़ता ही है और पड़ना ही है। तो इस जवाबदारी को समझ करके हम सभी बाबा के बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें जो व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, शक्तियों से संपन्न बन करके सबकी सेवा करें। तो हम सब का ये परम कर्तव्य है। तो सभी पूर्वज है ना, जो क्लास में बैठे हैं सब क्या समझते हैं अपने आप को, जो समझते हैं हम पूर्वज हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब हैं। तो फिर अलबेलापन, आलस्य, ऐसे जो कर्म हो जाते हैं, बोल होते हैं, उन सब से मुक्त होना पड़ेगा। और कल ऐसी तपस्या करना जो अनुभव नहीं हुए हैं वो हम अनुभव करके अपने प्रकंपन, अपने शांति के वाइब्रेशन इस वायुमंडल को दें ताकि बाबा के कार्य में और जल्दी से तीव्रता आए और बाबा का नाम बाला हो जाए। ओम शांति।